कुछ देर बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, जिसने ईशान का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने निगाहें उस ओर घुमाई तो नज़र सामने खड़ी जानकी जी पर पड़ी, जो उसे पहले से काफी अलग नजर आईं। आगे के बालों में कुछ सफेदी आ गई थी, शरीर पहले से कमजोर हो गया था, आंखें अंदर को धंस गई थीं और अजीब सा गम सुनापन खुद में समेटे हुए था। बदन पर सूती की सफेद साड़ी लिपटी थी, न मांग में सिंदूर न गले में मंगलसूत्र, सूनी कलाइयां। बिना किसी साज श्रृंगार के वो ऐसे लग रही थीं जैसे किसी ने फूलों से सभी रंग चुराकर उनकी बगिया उजाड़ दी हो और अब वहां मुरझाए रूखे कण ही शेष हैं। ईशान, जिसने उन्हें कभी इस रूप में देखने की कल्पना भी नहीं की थी, उसे इतना गहरा सदमा लगा कि वो चौंकते हुए उठकर खड़ा हो गया। वहीं उसको यहां देखकर जानकी जी पहले तो चौंक गईं, फिर कुछ शर्मिंदा सी हो गईं। मां, ईशान ने बेचैनी से उन्हें देखते हुए उन्हें आवाज दी, मानो उनसे कन्फर्म करना चाहता हो कि सच में सामने वही खड़ी हैं, वो कोई ख्वाब नहीं देख रहा और ना ही ये उसकी आंखों का धोखा है। आप यहां क्यों आए बेटा? जवाब में जानकी जी की गहरी निराशा और दुख में डूबी हुई आवाज आई। ईशान तुरंत उनके पास चला आया, पहले तो उनके पैर छुए, फिर उन्हें लाकर सोफे पर बिठा दिया। माँ, ये सब क्या है? कब हुआ ये? आप अपना घर छोड़कर यहाँ क्या कर रही हैं और आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? ईशान उनकी ये अवस्था देखकर बेहद दुखी था, वहीं उसके सवाल सुनकर जानकी जी की आंखें छलक आई थीं। बस बेटा, जिंदगी में ये दुख देखना लिखा था सो भोग रहे हैं। क्या मतलब? साफ साफ बताइए माँ, ये सब कब और कैसे हुआ? आप यहाँ इस हालत में क्यों हैं? ईशान ने विचलित उलझन भरी निगाहों से उन्हें देखते हुए चिंतित स्वर में सवाल किया। बेटा, कशिश के पापा एक अभिमानी आदमी थे, उन्होंने अपने गुरूर के ऊपर कभी किसी को जगह नहीं दी। अपने बेटे से बहुत प्यार था उन्हें, बहुत मान था उस पर। अपनी बेटियों को तो उन्होंने बस सर का बोझ समझा और बेटे पर अपनी दुनिया लुटा दी। पर जब वही बेटा उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर भागकर प्रेम विवाह करके अपनी पसंद की लड़की को बहू बनाकर घर ले आया और उस लड़की के लिए अपने पिता का अपमान किया, तो ये सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अहम टूटा और अपने गुरूर के साथ वो भी टूटते गए। स्वास्थ्य गिरता गया और चिंता बढ़ती गई। एक दिन काम पर थे जब हार्ट अटैक आया और वो हमें छोड़कर चले गए। उनका क्रियाकर्म होने के बाद हमें यहाँ भेज दिया गया कि अब उस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं। हम भी चुपचाप आ गए। बेटियों पर बोझ बनना नहीं चाहते थे और बेटे ने रखने से इनकार कर दिया तो एक यही जगह बची थी हमारे लिए। हर्ष ने हमारे रहने का यहाँ इंतजाम करवा दिया तो हमने भी सोचा कि उस घर में बहू बेटे के हाथ रोज रोज जलील होने से अच्छा ही है, यहाँ इज्जत से आगे के बचे दिन काट लेंगे और जब महादेव का बुलावा आएगा तो इस देह को त्याग कर चले जाएंगे। ईशान उनकी बातों और हर्ष के रवैये के बारे में जानकर जितना हैरान था, उतना ही गहरा दुख उसे ये जानकर पहुंचा था कि यहाँ उनके साथ इतना कुछ हो गया और उन्होंने उन्हें कुछ बताना तक जरूरी नहीं समझा। माँ, क्या दामाद बेटा नहीं होता? अगर बेटा अपने माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले तो क्या दामाद का फर्ज नहीं बेटा बनकर उनकी जिम्मेदारी उठाए? आपने तो मुझे पहले दिन से अपना बेटा कहा था ना, फिर जब आपके साथ इतना सब हो रहा था तो आपने अपने इस बेटे को याद क्यों नहीं किया? क्या आपने मुझे इस लायक ही नहीं समझा कि आपके मुश्किल वक्त में मैं आपके काम आ सकूं? क्या सिर्फ आपने नाम के लिए ही बेटा कहा था, इसलिए जब बेटे की जिम्मेदारी निभाने की बारी आई तो आपने मुझे एकदम से पराया कर दिया? मुझे तो छोड़िए, आपने अपनी बेटी तक को कुछ नहीं बताया। हम बीते महीनों से ये सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं कि जाने यहाँ क्या हुआ जो आपने फोन करना बंद कर दिया। अभी भी अगर मैं आपको ढूंढते हुए खुद यहाँ नहीं आता तो आप हमें कुछ नहीं बताती। क्यों माँ, इतना पराया क्यों कर दिया आपने हमें? दामाद था पर बेटे का प्यार व मान पाया था, सो आज बेटा बनकर उनसे शिकायत कर रहा था। और जवाब में जानकी जी बस शर्मिंदगी से सर झुकाए रो रही थी, शायद अपनी किस्मत और हालत पर आंसू बहा रही थी। ईशान ने भावनाओं में बहकर उनसे ये बातें कहीं, पर फिर उन्हें यूं रोते देखकर उसने खुद को संभाला और दृढ़ स्वर में अपना फैसला सुना दिया। अब तक जो होना था हो गया, जैसे और जिस हालत में आपको जिंदगी काटनी थी आपने काटी, जो दुख भोगना था भोग लिया, पर अब आप यहाँ नहीं रुकेंगी, आप मेरे साथ बनारस चलेंगी और अब से मेरे और कशिश के साथ ही रहेंगी। जहाँ इतने लोग रहते हैं वहाँ एक और सही, पर अब मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। और आप ये तो कहने की सोचिए कभी मत की बेटी के घर नहीं जाएंगी, क्योंकि आपको आपकी बेटी नहीं बेटा लेकर जा रहा है। अगर आपने कभी भी दिल से मुझे अपना बेटा माना हो तो मेरी इस विनती को नहीं ठुकराएंगी आप और मेरे साथ यहाँ से चलेंगी। और अगर आप नहीं मानी तो वापस जाकर मैं कशिश को सब बता दूंगा, उसके बाद वो खुद इस हालत में यहाँ आएगी और आपकी बेटी है इतना तो आप जानती ही होंगी कि कितनी जिद्दी है वो। कशिश का नाम लेकर ईशान ने एक तरह से उन्हें ब्लैकमेल किया था और वो बेबस लाचार सी उसकी बात मानने पर मजबूर हो गई थी। रात गए यहाँ की सब फॉर्मेलिटी पूरी करके ईशान उनके साथ स्टेशन पहुंचा, वहीं रात का खाना हुआ और अगली सुबह बनारस की ट्रेन में बैठ गए। दोपहर बीत रही थी, कशिश कल गई थी सो आज सुबह ही लौट आई थी। उसका वहाँ मन ही नहीं लगा, वैसे भी ट्यूशन भी देखना था उसे। इस वक्त वो चाची और बड़ी मम्मी के साथ आंगन में बैठी थी। चाची फल काटकर उसे खिला रही थी। घर पर बस वही तीनों ही थे। कुछ देर बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो बड़ी मम्मी दरवाजा खोलने चली गईं। दरवाजे पर ईशान के साथ किसी अनजान औरत को देखकर उन्होंने कुछ पूछना चाहा कि उससे पहले ही ईशान ने उनका सामान उठाए अंदर की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा, अंदर आइए बड़ी मम्मी, आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। उसके बाद उसने जानकी जी की ओर नजरें घुमाई और हौले से मुस्कुराते हुए अपनेपन से बोला, आइए मम्मी, अंदर आइए। कौशल्या जी उसका संबोधन सुनकर चौंक गई, जबकि ईशान की आवाज सुनकर कशिश चौकी पर से उतर गई। कौशल्या जी ने अब की कोई सवाल नहीं किया, बस दरवाजा बंद कर दिया। कशिश की नजर जब ईशान के साथ मौजूद जानकी जी पर पड़ी तो पहले तो उनकी ये दशा देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ, फिर उसकी आंखें धुंधला गई और गले से भर्रा भरी आवाज बाहर निकली, माँ। चाची और बड़ी मम्मी दोनों कशिश को देखने लगी। वहीं कशिश खुद को संभालते हुए बदहवासी उनकी ओर दौड़ते हुए उनके सीने से लग गई थी। उनके इस रूप ने बहुत कुछ बयां कर दिया था। अब भी बहुत से सवाल थे उसके मन में, पर फिलहाल वो इतने सालों बाद अपनी माँ से मिली थी और उनकी ये हालत देखकर भावुक हो गई थी। जानकी जी की भी आंखें झलक आई थी और उन्होंने कशिश को अपने आंचल में छुपा लिया था। कौशल्या जी और महिमा जी अब कुछ कुछ बात समझ गई थी। दोनों ही खामोशी से माँ बेटी का मिलन और भाव विभोर करने वाला ये दृश्य देख रही थी। ईशान ने कुछ देर इंतजार किया पर कशिश का रोना नहीं थमा, तो आखिर में उसे अपनी खामोशी तोड़नी ही पड़ी। काशी माँ इतनी दूर से आई हैं, अंदर लेकर जाओगी, जरा आराम भी करने दोगी या यहीं खड़ा रखोगी? कशिश के कानों में उसके शब्द पड़े तब कहीं जाकर उसका ध्यान इन बातों पर गया। खुद को संभालते हुए वो उनसे अलग हुई। जानकी जी ने उसके आंसुओं को पूंछते हुए उसके चेहरे को जाने कितनी ही बार चूम लिया था। ईशान के कहने पर चाची उन्हें अपने कमरे में ले गई और कौशल्या जी उनके नाश्ते पानी का इंतजार करने लगी, जबकि ईशान कशिश के साथ वहीं चौकी पर बैठा था, पर दोनों की कोई बात नहीं हुई।
कुछ देर बाद जानकी जी नाश्ता करके चाची के कमरे में ही आराम करने चली गई थी और कशिश भी उनके साथ ही थी। जानकी जी ने उसे सब बता दिया था। सारी बातें सुनकर बहुत रोई थी वो और जानकी जी ने बहुत मुश्किल से संभाला था उसे। फिर वो उनकी गोद में सर रखकर लेट गई थी। सालों बाद माँ की गोद नसीब हुई थी जो किसी जन्नत से कम नहीं थी, और रोई भी बहुत थी, सो जल्दी ही वो नींद की आगोश में समा गई थी। ईशान ने सब देखा था, फिर खामोशी से अपने कमरे में चला गया था। शाम का वक्त था, पूरा परिवार एक साथ आंगन में मौजूद था। ईशान ने संक्षेप में सारी समस्या उन्हें बता दी और स्थिति की गंभीरता से उन्हें अवगत करवाते हुए अंत में रामविलास जी का रुख किया और गंभीरता से बोला, मैंने सारी बात बता दी है और मेरी इच्छा है कि माँ अब से यहीं इसी घर में हमारे साथ रहें। अगर इनके यहाँ रहने से ऐतराज़ हो तो अभी बता दीजिए, मैं आसपास कहीं इनके रहने का इंतज़ाम कर दूंगा, पर अब रहेंगी ये यहीं बनारस में मेरी आंखों के सामने। हमें कोई आपत्ति नहीं बेटा, सिर्फ बेटे का ही फ़र्ज़ नहीं होता बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनना, बेटी पर भी उनकी बराबर जिम्मेदारी होती है। अगर बेटा अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़े तो बेटी को कदम आगे बढ़ाने ही पड़ते हैं। जितना हक एक माता पिता का बेटे पर होता है उतना बेटी पर भी होता है, और उनका ख्याल रखना उन दोनों का फ़र्ज़ है। फिर दामाद भी बेटा ही होता है, ये पूरे हक और सम्मान के साथ इस घर में रह सकती हैं। इनके कारण हमें कशिश जैसी बहू मिली है, हम तो आभारी हैं इनके। अगर इनके कुछ काम आ सके तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। बड़े पापा आसानी से मान गए थे और बाकी सबको भी कोई आपत्ति नहीं थी। फिलहाल उन्हें रजनी के कमरे में ठहराया गया था। रात के खाने के बाद कुछ देर सब साथ ही रहे। जानकी जी और इस परिवार के बीच आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, और जैसे सब कशिश का ख्याल रख रहे थे वो उसे लेकर आज पूरी तरह से निश्चिंत हो गई थीं।